हवेली। आधी रात। हवेली के बाहर की हवा ठंडी, शांत और अजीब तरह से भारी थी, जैसे रात खुद किसी गहरे राज को ढो रही हो। मुख्य गेट के सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। हेडलाइट की हल्की रोशनी दीवारों पर तैरती हुई कुछ पल बाद बुझ गई। दरवाज़ा खुला। विश्वनाथ। यात्रा की थकान उसके कंधों पर जैसे परछाइयों की तरह लटक रही थी, पर चेहरे पर वही गहरी, स्थिर और खामोश तीव्रता। कोई नहीं जानता था कि वो रात में ही लौट आया है। उसके कदम हवेली की गलियारों में बिना आवाज़ के चलते गए, जैसे ये हवेली खुद उसके आने की आदि हो। कमरा। वही रात, आधी रोशनी। शामली सो रही थी। गुलाबी रंग की हल्की सी साड़ी, नींद में थोड़ा सा सरका हुआ पल्लू और खुले बाल, जिन पर खिड़की से आती चांदनी उसे किसी चित्र की तरह चमका रही थी। विश्वनाथ दरवाजे पर ही ठहर गया। उसकी आंखें एक पल को केवल देखने में अटक गईं। जाने कितनी देर तक। शामली के गाल पर पड़ी एक पतली सी लट उन नींद भरे सांसों के साथ हिल रही थी। चेहरा शांति से भरा, पर उस शांति में एक अजीब सा आकर्षण जो नज़र हटाने नहीं दे रहा था। ठंडी हवा का झोंका आया। शामली हल्का सा कांपी। विश्वनाथ लगभग अनजाने में आगे बढ़ा, बहुत धीरे, जैसे उसे डर हो कि उसके कदमों की हल्की सी आवाज़ भी शामली की नींद छीन न ले। उसने चादर उठाई, फिर बेहद सावधानी से उसके कंधों पर डाल दी। उंगलियां बस एक पल को उसकी साड़ी के किनारे से छुईं, गर्म, नर्म और अजीब तरह से दिल में उतर जाने वाली। शामली को कुछ पता नहीं चला। उसके होंठ नींद में भी शांत मुस्कान जैसे दिखे थे। विश्वनाथ सांस भरते हुए पीछे हट गया। बाथरूम। कुछ देर बाद शावर की आवाज़, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। वो जितना हो सके धीरे धीरे चल रहा था, शायद उसके भीतर किसी को जगाने की बहुत गहरी, बहुत निजी और अनकही झिझक थी। फिर वो बाहर आया, ताज़ा कपड़ों में, थोड़ा थका हुआ, पर चेहरे पर वही स्थिर गंभीरता। उसने खिड़की के पास खड़े होकर सिगार चलाया। धुआं चांदनी में तैरता हुआ फर्श पर लंबी परछाइयां बनाता गया, पर उसकी आंखें वापस कमरे में ही थीं, वापस उसकी ओर। कमरे में लौटना। विश्वनाथ धीरे से आया और अपनी तरफ बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन नज़रें फिर शामली पर टिक गईं। वो नींद में थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ गई थी, जैसे किसी अदृश्य खिंचाव से। उसकी सांसें हल्की, गर्म और बेहद करीब महसूस हो रही थीं। विश्वनाथ के अंदर कुछ बहुत मजबूत और बहुत चुप एक साथ जागा। वो उसके चेहरे के पास झुका, इतना करीब कि उसके अपने सांसों का ताप शामली की त्वचा से टकराने लगा। उसकी लट फिर से गाल पर गिराई थी। एक पल, विश्वनाथ हुका, जैसे खुद को ही पूछ रहा हो ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके हाथ ने बहुत धीरे, बहुत सदे हुए तरीके से वो लट उठा ली। उंगलियां शामली की त्वचा से बस आधे इंच की दूरी पर। उस दूरी में इतनी गर्मी थी कि मानो हवा तक पिघल रही हो। शामली नींद में हल्का सा करवट बदली और उसका हाथ विश्वनाथ की कलाई को अनजाने में छू गया। विश्वनाथ का दिल एक पल रुक सा गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल दो लोगों की सांसों के बीच एक अजीब, गहरा और खतरनाक सन्नाटा। वो धीरे से उसके और करीब झुका, इतना कि अगर शामली जाग जाती तो दोनों के बीच एक सांस जितनी भी दूरी न बचती। उसकी पलकों पर एक परछाई गिरती गई। विश्वनाथ जान गया, अगर एक सेकंड और रुका तो शायद ये मर्यादा की रेखाएं उसके अपने हाथों से टूट जाएंगी, इसलिए वो वापस पीछे हट गया, धीमे, गहरे और भारी मन से। लाइट बंद की, बिस्तर के अपने हिस्से में चुपचाप लेट गया, लेकिन उसकी नज़रें अंधेरे में भी एक आखिरी बार शामली के चेहरे पर गईं। उसकी सांसें हल्की सी कांपी और फिर शांत हो गईं। कुछ पल बाद विश्वनाथ भी सो गया। हवेली। वही सुबह। कमरे में जो खामोशी थी वो वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा। वो सोच रही थी कि विश्वनाथ जाग चुके थे, लेकिन सच ये था कि वो सो रहे थे, गहरी, स्थिर, एक अजीब सी उनींदी अवस्था में। अंदाज लगाना मुश्किल था कि वे नींद में थे या किसी और ही दुनिया में खोए हुए। शामली जैसे जैसे पास आती जा रही थी, विश्वनाथ का चेहरा उतना ही शांत दिखाई दे रहा था, और वही शांति शामली को और घबराने लगी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना भारी व्यक्तित्व वाला आदमी उसके सामने चुपचाप बिना किसी हरकत के सो सकता है, पर फिर भी वो उनके सामने खड़ी थी, उस हवा से आई पत्ती को धीरे धीरे उनके चेहरे से हटाने की कोशिश में। जैसे ही उसकी उंगलियां उनके गाल के पास पहुंची, उस पत्ती को छूने भर से पहले विश्वनाथ की सांसों की रफ्तार बदली। वो बहुत हल्का सा हिला, इतना हल्का कि शायद किसी और को पता भी न चलता, पर शामली ने महसूस कर लिया। और जैसे ही पत्ती उसकी उंगलियों से हटकर नीचे गिरने लगी, शामली का कोमल स्पर्श उनके चेहरे से बस एक इंच दूर रह गया। उसी क्षण विश्वनाथ की आंखें धीरे धीरे खुली। कोई झटका नहीं, कोई चौंकना नहीं, कोई तड़प कर उठना नहीं, बस धीरे, बेहद धीरे, जैसे किसी गहरी नींद से नहीं बल्कि किसी ट्रांस से जाग रहे हों। उनकी नजरें सबसे पहले किस पर गईं?
शामली पर, सीधे बिना पलक झपकाए, जैसे उनके सामने पहली बार कोई ऐसा दृश्य आया हो जिसे वो समझना भी चाहते हों और महसूस भी। शामली स्थिर खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो जाग गए हैं। उसने वही पत्ती हटाई और तेजी से हाथ पीछे कर लिया, पर अब देर हो चुकी थी। विश्वनाथ ने वो पूरे पल को देख लिया था, उसका झुकना, उसकी उंगलियों का कंपन, उसका डर, उसकी हिम्मत, उसकी झिझक और वो स्पर्श जो लगभग हुआ था। उनकी आंखों में कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं थी, न गुस्सा, न नाराजगी, न तिरस्कार, सिर्फ एक अजीब सी जिज्ञासा, एक गहरी, स्थिर और बेहद शांत जिज्ञासा जो शायद वर्षों बाद किसी ने जगाई थी। शामली का दिल धक धक कर रहा था। आप सो रहे थे क्या? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, लेकिन शायद ये सवाल उसने मन में ही पूछा था, क्योंकि आवाज सिर्फ उसे सुनाई दी। विश्वनाथ जरा भी नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। उसकी नजरें इतनी स्थिर थीं कि शामली को लगा जैसे वो उसकी सोचे भी पड़ रहा हो। वो दो कदम पीछे हटी, पर फिर भी उसकी आंखों से बच नहीं पाई। कुछ सेकेंड ऐसे ही भारी खामोशी में बीत गए। फिर अचानक विश्वनाथ की पलक हल्की सी फड़की, इतनी हल्की कि ये बताना मुश्किल था कि वो सच में भाव प्रकट करना चाहता था या बस नींद का असर था। शामली का चेहरा लाल हो गया। वो लगभग भागते हुए बिस्तर से उठी, चप्पल पहनी और दरवाजे की ओर बढ़ी, पर जाने से पहले उसने एक बार मुड़कर देखा। विश्वनाथ अभी भी उसे देख रहे थे, उसी शांत गहरी नजर से, जैसे उसे एक स्पर्श ने उन्हें नींद से नहीं किसी अनकही भावना से जगा दिया हो। शामली ने जल्दी से नजरें चुरा ली और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, पर अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। विश्वनाथ ने पहली बार थोड़ी गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर वही हल्की सी रेखा फिर उभर आई जिसे मुस्कान कह पाना शायद गलत नहीं होगा, पर उतना आसान भी नहीं। उसने गहरी स्थिर आवाज में खुद से बहुत धीमे कहा, छुआ तो नहीं पर महसूस हुआ, और ये शब्द कमरे की हवा में घुलते ही स्पष्ट हो गया, सुबह का ये पल केवल शामली के लिए नहीं, विश्वनाथ के लिए भी कुछ बदल चुका था। अब वो दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां खामोशियां भी बहुत कुछ कहने लगी थी।